गुल चुगुल करके चार पांच स्क्रीनें खोल के रख लें।
हरफा जी पहले ये कह रहे हैं कि अभी कॉल करनी करना है,
अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं नहीं देना ये वो, अगली टीम हमारी आपको ये देगी अफ्रीकन लाइन सफारी के चार टिकट।
कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल एप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
3 अगस्त दिन शनिवार मैट्रो कबड्डी क्लब वालों नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो की निगरानी हेठ ब्रैम्पटन के CAA सेंटर दे विच करवाया जा रहा है कबड्डी कप, जिस विच पाकिस्तान के चोटी के कबड्डी खिडारियों की टीम भाग लवेगी। नाल ही एक कप मरहूम सरदार सुखमिंदर सिंह हंसरा नूं डेडिकेट किया जाएगा। इस कप की कोई एंट्री फीस नहीं, भाव बिलकुल फ्री होगा। वधेरे जानकारी कॉल करो सुखा मान 416-617-2405। प्राउड टू बी इन इट।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ओंटेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241
ਮਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ, ਮੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ।
ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 Markham Road ਸਕਾਰਪੋਰੋ, ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 416-264-3111।
Tele Time Electronics LEDs और Home Appliances की Hottest और Branded Range के साथ 0% Finance Guarantee on Lowest Prices और Free Delivery in GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें Tele Time Brampton 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke 1770 Albion Road या 9909 Markham Road। مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर फैमिलीज विद किड्स। अगर आपकी इनकम $60,000 से कम है और आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 से लेकर 60,000 तक की ग्रांट मिल सकती है और ये फंड 3 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑन्टेरियो, अल्बर्टा और BC प्रोविंस के लिए है। मजीद मालूम के लिए कॉल कीजिए शावेज 6477690241 6477690241।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से प्रोड्यूसर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील, कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब और सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
वेलकम बैक तमाम सामिंग को जो 770 एम डायल पर प्रोग्राम सुन रहे हैं साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब अब से लेकर तकरीबन 8:15 बजे तक जो है ये सिलसिला हमारा और आपका जारी और सारी रहेगा। अब जो है आपको पता है 6 से लेकर 7 बजे का टाइम होता है गर्मा गर्म खबरें और प्रेशर कुकर की सीटी बज चुकी है और शाजिया मलिक साहब अभी जो है वो स्टूडियो में अपनी तमाम डिशेज लेकर हाजिर हो चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू, इसको नोट करिएगा जो मैंने आपसे कहा अभी।
वालेकुम सलाम, वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम बरका।
फिर बोलेंगे कि यार तुमने मेरे ऊपर रहमतें नहीं भेजी।
नहीं नहीं, ये मैंने नहीं था कहा,
लेकिन फिर कुछ और कहा था।
हाँ, मैंने कहा तुम रहमतें भेजने के बाद फिर तुम कहते हो अगर आप जिंदा रही।
पूरा पूरी न्यूज़
फिर तुमने कहा कि नहीं, वो मैं जो है एंड में बोलता हूँ। हाँ। अभी मैं आप पे रहमत भेज रहा हूँ और एंड पे प्रोग्राम के वो बोलूंगा।
नहीं वो भी आप मतलब इसमें कोई वो बातें नहीं है, जो बातें मैं अपने लिए करता हूँ वही आपके लिए भी करता हूँ।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं क्या कहता हूँ अपने लिए आप ये बता दें। चले न्यूज शुरू करने से पहले आप मुझे बताएं मैं अपने लिए क्या बोलता हूँ।
अगर खैरियत रही तो
अगर जिंदगी रही,
अगर जिंदगी रही। अब ये नहीं तुम कहते ना कि अगर मेरी जिंदगी रही।
लेकिन अगर आप सिक्के,
लेकिन मेरे लिए तुम स्पेसिफिकली कहते हो अगर आप कल जिंदा रही।
नहीं नहीं, देखिए जिंदगी रही का, जिंदगी रही का भी अगर आप देखें ये वैसे ही है जैसे शेर शेरनी, मुजक्कर मोनस, तो ये भी वही है, मुजक्कर मोनस ही है। अच्छा। अगर जिंदगी रही और आप जिंदा रही, बात एक ही है।
अच्छा अच्छा, उसमें कुछ
मैं मुजक्कर हूँ आप मोनस है।
अच्छा अच्छा, ओके ओके,
बात समझ आई।
हाँ आ गई समझ, लेकिन उसमें जो है ना वो लफ्जों की तुम्हारी जो चलाकी है ना वो मुझे समझ में आ रही है।
तो इससे सादा अल्फाज और क्या होंगे, इतना मासूम आदमी, मासूम अल्फाज कि जिंदगी रही और आप जिंदा रही, तो बात एक ही है।
हाँ,
कि मेरी जिंदगी रही और आप भी अगर जिंदा रही।
हाँ,
तो बात एक ही है ना,
तो मेरी बोला करो ना।
नहीं ये वो आपके जर्नलिज्म में होता है ना।
हाँ,
वो एक बड़ी वैल्यू होती है उस नुक्ते की और एक सवाल निशान की।
हाँ,
ये वही है।
अच्छा 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 अच्छा, ये वो है,
ये वही है
मार्क है
ये होता है ना क्वेश्चन मार्क।
हाँ क्वेश्चन मार्क,
ये वही है।
ठीक है ठीक है, سر میں آپ سے بہت سیکھ رہی ہوں, ہمیں کہاں آتی ہیں یہ چیزیں, ہے نا؟ ہم تو آپ سے سیکھیں گے نا.
میں کبھی, میں تو آپ سے کہتا نا, میری تو ڈگری دو پیپرز رہ گئے میرا ماسٹر, تو ورنہ اگر وہ دے دیتا میں اور ڈگری مل جاتی پوری, پھر میں کہہ دیتا شاید میں بھی چھوٹا موٹا رپورٹر, لیکن میں تو اپنی ڈگری مکمل کی نہیں.
ماسٹر ڈگری خوش ہو گیا تھا. ہماری کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے سر؟
آپ ماشاء اللہ کیا بات, سینئر ہیں, اور آپ جس طریقے سے پریشر کوکر میں پکا کے لاتی ہیں,
سینئر بس ایج میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں.
وہ پھر غلطی کر رہے ہیں آپ, وہ اس کے اوپر اسکوائر بھی لگائے.
ہاں
بھول جاتی ہوں
میں نے, اسکوائر تو ہم نے کل ایکسپلین کر دیا تھا ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, عامر جو ہے وہ 40 ایئرز کا ہے اور میں 120 ایئرز, کیونکہ وہ 40 اسکوائر ہے نا, تو میں 120 ایئرز کی ہوں. وہ ہم نے کل ہی ایکسپلین کر دیا تھا. اور تم نے کوئی آج سے ایک دفعہ نہیں 50,000 دفعہ کہا ہے کہ آپ 1945 میں پیدا ہوئی ہیں, تو اب لوگوں کو رجسٹر ہو گیا, ان کو آلریڈی یہ باتیں پتا ہے عامر, یہ ہم کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
نئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں,
اچھا
ماں باپ کے
نئے نئے بڑے ہو جاتے ہیں,
بڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا.
اچھا کہ میں 1945
بڑی آپی بھی ہیں شہر میں, بہت بڑی ہیں, کہتے ہیں نا اسکوائر والی, تو ان کو بتانا پڑ جائے.
اچھا
میں نہیں چاہتا کوئی بھی انفارمیشن 770 سے جائے نا, وہ
غلط جائے. نہیں جی یہ بالکل صحیح عامر کہہ رہے ہیں, میں 1945 میں پیدا ہوئی تھی, بالکل صحیح وہ کہتے ہیں, اور بالکل وہ 40 ایئرس کے ہیں تو 40 اسکوائر کی ہوں میں, بالکل صحیح کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ, تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں. لیکن کیا کریں, زمانہ جہالت میں ہم نے زندگی گزار دی, گرو تو ہمارے پھر بھی یہی ہے جو 40 ایئرس کے ہیں, یہ اسکوائر والے کو سکھاتے ہیں. تو بس بڑی مہربانی سر, میں آئی ایم ہائیلی انڈیپٹیڈ ٹو یو.
تھینک یو.
ٹھیک ہے جی, اچھا جی, چلو جی خیر میں شروع کر لیں. اور دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اوپن مائک کیفے, اور یہاں پہ بڑے زبردست کھانے ہوتے ہیں جی. ناظر چاہ صاحب کا یہ ریسٹورانٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اسپیشل لے کر آئے ہیں بہت بڑے بڑے دگج قسم کے شیفس جو ہیں پاکستان سے, اور وہ یہاں پہ کھانے بناتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی انجوائے کا مزہ لینا ہے تو آپ جائیں ادھر 1310 ڈنڈاس اسٹریٹ ایسٹ یونٹ 3 مسساگا میں, اور اس کا نمبر ان کا جو ہے ریسٹورانٹ کا وہ ہے 416-526-6800. اور جی راجہ بادشاہ جی ہوتے ہیں آل اسٹیٹ کے ایجیکس ایجنسی میں, اور آپ کو کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو رائٹ کوریج دیتا ہوں, ہوم اور آٹو انشورنس دیتے ہیں, اور اگر آپ کو بالکل واقعی رائٹ چاہیے ہے سارا کچھ انشورنس, تو آپ راجہ بادشاہ جی کو فون کریں, ان کا نمبر ہے 647-290-3773. اور جناب ڈاکٹر فیاض قریشی کہتے ہیں کہ میں آپ کو بہت ساری ڈینٹسٹری کی سروسز دیتا ہوں, صرف میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا سیڈیشن ڈینٹسٹری نہیں آپ نے کرانی, جیسے ہی آپ بے ہوش ہوئے آپ کے اوریجنل دانت غائب. تو ان کا جو جناب کلینک ہے وہ ہیں دو کلینک ان کے, مسز آگا میں اور ایک اسکارو میں. مسز آگا میں جو ان کے کلینک تھا اس کا نمبر ہے 9052325678, اور اسکارو میں جو ہے اس کا نمبر ہے 416-757-9999. ٹھیک ہے جی, چلو جی ہم اپنی خبریں شروع کرتے ہیں, اور ہم آپ کو جو ہے وہ اب بتاتے ہیں کہ اب آج ملک میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ مطلب کنڈیشن کیسی ہے, کنڈیشن گرمی کے علاوہ کیسے, ویسے جو ہے کافی گرمی ہے, جو سیاست ہے وہ کافی گرمائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اچھا جناب, سب سے پہلے تو جو گلوبل افیئرز کینیڈا ہے اس نے کہا جتنے کینیڈینز لیبنان میں ہیں وہ فوراً لیبنان کو چھوڑ دیں. تقریباً 20,000 کینیڈینز جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں, لیبنان کی حالت بے انتہا خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدن, آپ کو پتا ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ بارڈر پہ کانسٹنٹلی اٹیکس کر رہا ہے, اور حزب اللہ نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ ہم بھی اس کے اب جواب دیں گے, تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ فلیئر اپ ہو جائے. حالانکہ امریکہ کی تقریباً ساری جو بڑی جو ہائی لیول لیڈرشپ ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے, ڈفرینٹ ملکوں سے بات کر رہی ہے, لیکن ابھی کچھ آثار اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ امیڈیٹلی جب تک کمرشل فلائٹس چل رہی ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر چونکہ بہت ایسکلیٹ کر گئی ہے ٹینشن, آپ فوراً وہاں سے نکل کے آ جائیں, ایسا نہ ہو کہ فلائٹس بند ہو جائیں اور آپ پھنسے رہ جائیں. اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل افیئرز کینیڈا کانسٹنٹلی یہ جو ہے یہ لوگوں کو وارن کر رہا ہے. نتاشا فگالی ایک ونسر بیس کینیڈین لیبنیز ایکٹیوسٹ ہیں اور ایڈوکیٹر ہیں, جن کی کہ فیملی ابھی بھی کچھ تو لوگ اس کے وزٹ کر رہے ہیں لیبنان کو اور کچھ وہیں پہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کینیڈینز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو لائٹ نہ لیں اور امیڈیٹلی लेबनान को छोड़ दें, लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स ना करें। बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो कोई लिमिटेड कैरियर्स वहां पे चल रहे हैं उसका फायदा उठाते हुए फौरन वहां से निकल जाएं और आसपास के इलाकों में जाएं। इसके अलावा जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो उसने भी अपनी एडवाइजरी, अगर आप उसकी ट्रैवल एडवाइजरी देखेंगे लेबनान के लिए, तो उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बिल्कुल लेबनान में ना आप ट्रैवल करें, बिकॉज ऑफ क्राइम, टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट, किडनैपिंग, अनएक्सप्लोर्ड लैंडमाइंस, रिस्क ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि खास तौर पे जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां से तो इमीडिएटली निकले क्योंकि वहां पे इंक्रीज रिस्क है लड़ाई का। तो ये जो है आप सुन लें भाई इनकी बात जो है ग्लोबल अफेयर्स कनाडा वालों की, और आप वहां से निकलें। अच्छा जनाब, मंडे जो है वो होने वाली है छुट्टी, यानी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। तो अब लॉन्ग वीकेंड में क्या खुला है और क्या बंद है हम आपको अभी बता देते हैं, ताकि आप अपना वीकेंड का अगर कोई प्लान बनाना चाहते हैं, क्योंकि 3 डेज के हॉलीडेज हैं, तो अगर आपको कुछ प्लान बनाना है तो आप बनाएं। तो क्लोज क्या रहेंगे और बंद और ओपन क्या रहेंगे वो हम आपको बताते हैं। ओपन रहेंगे सिलेक्ट एलसीबी और सिलेक्ट बियर स्टोर लोकेशन, लेकिन सिलेक्ट नॉट ऑल, ठीक है। मोस्ट ग्रोसरी स्टोर ओपन रहेंगे, कुछ शॉपर्स ड्रग मार्ट, रेक्सॉल की लोकेशन, जो मॉल्स हैं जीटीए के अंदर वो, जैसे कि ईटन मॉल है, यॉर्कडेल, वॉन मिल्स, शेयरवे गार्डन्स, और जितने भी सिनेप्लेक्सेस होंगे वो खुले रहेंगे। जाहिर है कि लोग मूवीज देखने के लिए ज्यादा जाना चाहेंगे। ट्रोनो जू, रिप्लीज एक्वेरियम, वंडरलैंड, आउटडोर पूल्स, स्प्लैश पैड्स, ये खुले रहेंगे। क्लोज्ड अप क्या है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट एलसीबीओ स्टोर्स, कुछ सिर्फ जब जैसे मैंने बताया सिलेक्ट खुले रहेंगे, मोस्ट बियर स्टोर सिर्फ सिलेक्ट खुले रहेंगे। फेडरल, प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपल ऑफिसेज बंद रहेंगे, पोस्ट ऑफिसेज, इंडोर पूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब क्लोज रहेंगे। ट्रांजिट जो होगा वो रिड्यूस्ड आवर्स के ऊपर रन करेगा, तो इसलिए आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, ऐसी जगह पे चले जाओ फिर गाड़ी भी ना लेके जाओ और फिर वहां से ट्रांजिट चले ना वापसी पे, तो मुश्किल रहेगी आपको। गो ट्रांजिट जो है वो ऑपरेट करेगी सैटरडे के आवर्स पे, टीटीसी जो है हॉलीडे के स्केड्यूल पे चलेगा, और सैटरडे को गो ट्रांजिट जो है अपनी मिल्टन लाइन के ऊपर सर्विस इंक्रीज करेगा, क्योंकि टोरंटो के अंदर कैरिबियन कार्निवल हो रहा है, तो उसके लिए वो लोगों को लेकर आना चाहेगा। तो ये है जनाब सारी इनकी। इसके साथ साथ जो सीबीएसए है उसने भी कहा है कि आप उनकी जो साइट है सीबीएसए की उस पर आप जाएं, आपको टिप्स दिए हैं उन्होंने कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, अगर आप कनाडा से अमेरिका या अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, तो वो भी आप वो कहते हैं जी जरूर हमारी वेबसाइट फॉलो करें ताकि आपका ट्रैवल जो है स्मूथ रहे। टोरंटो के अंदर जो है आज एनवायरमेंट कनाडा ने फिर से जो है वेदर एडवाइजरी दी है, और उन्होंने वार्न किया है कि स्लो मूविंग थंडर स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारी ढेर सारी बारिश लेकर फिर से आ सकते हैं 30-60 मिलीमीटर की, और उन्होंने कहा जी कि ये हौले हौले इवनिंग तक जाते हुए खत्म हो जाएगी। लाइट शावर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि 30% कोई लाइट शावर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं सैटरडे को। टोरंटो रीजनल कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने तो फ्लड आउटलुक जो है उसके लिए भी वार्निंग दिया है। जीटीए के अंदर जो रिवर सिस्टम्स हैं वो कहते हैं जी कि उसके अंदर हैजर्डस कंडीशन रहेगी, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी बेतहाशा बारिश की वजह से लो रहेगी, और बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे पॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि वो पानी भराएगा कराची की तरह, बिल्कुल आपको कराची याद आएगा, और उन इलाकों में भी जहां पे पुअर ड्रेनेज है। वेदर जो है हॉट एंड ह्यूमिड कल सैटरडे को वैसे तो वापस आएगा, और मिक्स ऑफ सनी और क्लाउडी रहेगा, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और आपको फील लेकर होएगा 38 डिग्री ह्यूमिडिटी की वजह से। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप वल्नरेबल लोगों में से हैं, जैसे आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम आ जाता है, हेडेक्स होते हैं, स्ट्रोक आने का अगर आपको खतरा है, या आपको हार्ट के कोई एलिमेंट्स हैं या कुछ, तो आप बिल्कुल कल बाहर मत फिरें, क्योंकि आपको जो है वो गर्मी, जो हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में गर्मी लग सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अमेरिका के अंदर जी कमला हैरिस और ट्रंप साहब के बीच अब जो है वो जाहिर है कि मैच शुरू हो गया वहां पे भी, तो लड़ाई झगड़े जो हैं वहां पे भी शुरू हो गए हैं कैंपेन में। कमला हैरिस के ऊपर बहुत सारे एतराज किए हैं ट्रंप साहब ने, और उसके ऊपर कमला हैरिस ने कहा कि ये अपने फिर वापस वही पुराने तरीकों के ऊपर आ गया है, और उन्होंने कहा जी कि यूएस डिजर्व्स बेटर, एक टेक्सस में रैली करते हुए उन्होंने ये बातें की। ये हुआ ये कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट जो थे, जिसमें के जर्नलिस्ट ब्लैक जो थे खासतौर पर, बड़े नाराज भी हुए ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब ने कहा जी कि आज तक तो ये कहती थी कि मेरा इंडियन हेरिटेज है और हर वक्त इंडियन हेरिटेज को ये प्रमोट करती थी। अभी थोड़े साल पहले मुझे पता चला है कि जी ये ब्लैक भी है, तो आप ये ब्लैक आइडेंटिटी जो है उसको भी प्रमोट कर रही है वोट्स लेने के लिए, और ये कब हुआ मुझे पता नहीं चला। हैरिस ने कहा कि जी ट्रंप साहब जो है वो फिर से अपनी डिविसिव और डिसरिस्पेक्टफुल जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो बेटर लीडर डिजर्व करते हैं जो सच बोलता है और हॉस्टाइल नहीं है, एंग्री नहीं है, जब उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो बदतमीजी नहीं करता है आगे से, और अंडरस्टैंड करता है कि हमारे डिफरेंसेस जो है हमें डिवाइड नहीं करते बल्कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। ये जो है बात कर रही थी सिग्मा गामा रो के 60th इंटरनेशनल बानियल बुले के ऊपर, और वो कहने लगी कि जी आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ डिवाइन नाइन, ये ग्रुप ऑफ ब्लैक फ्रिटर्निटीज और सोसाइटीज है इन यूएस के अंदर। इसके अलावा ट्रंप साहब जो है पेंसिल्वेनिया के अंदर एक रैली कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा जी आप फॉरगेट मत करें कि चार हफ्ते में जो जितने भी पोल आ रहे थे अमेरिका में उसमें इनको वर्स्ट कंसिडर किया जा रहा था, अब ये जो है अपना पर्सनालिटी मेक ओवर कर रही हैं और सडनली जो है मार्गरेट थैचर बनने की ये कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी न्यूज आई है कि ये कमला हैरिस जो उनको काफी सपोर्ट मिल रही है, एक तो डोनेशंस काफी आए हैं, इसके साथ साथ जो है जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के जो चेयर हैं जेमी हैरिसन, उन्होंने कहा है जी कि शी हैज इनफ डेलीगेट वोट्स टू विन डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन, तो जीती हुई है ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये वाइस प्रेसिडेंशियल अपना कैंडिडेट कौन सा चूज कर रही है। अगर इन्होंने जो वैंस हैं जेडी वैंस उनसे अगर बेटर कोई किया तो मुझे लगता है कि इनके चांसेस जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे ट्रंप साहब से, क्योंकि ट्रंप साहब का जो वाइस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उससे लोग कुछ इतने जुड़ नहीं रहे हैं अभी भी, तो जो है वो अब देखेंगे फाइनली क्या होने वाला है। कतर और इजिप्ट जो हैं जी वो आपको पता ही है कि यूएस के साथ बैठे हुए थे हमास और इसराइल के बीच में दोस्ती कराने के लिए, लेकिन अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हानिया साहब की असैसिनेशन हुई है उसके बाद ये चीजें जो हैं आगे कैसे चलेंगी। व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने कतारी प्राइम मिनिस्टर और जो कतारी फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्थानी उनके साथ डिस्कशंस की हैं, इनकी मुलाकातें जो हैं, और भी कुछ हाई लेवल जो अमेरिकन डेलीगेट्स हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट में हैं, तो बहरहाल ब्लिंकन साहब जो हैं वो कतारी ऑफिशियल्स के साथ मिल रहे हैं और उसके साथ ये जो टेंशन है मिडल ईस्ट में उसकी ऊपर बात कर रहे हैं। इन्होंने मैथ्यू मिलर साहब ने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर लेकर आए और यहां पे जो हॉस्टेजेस हैं उनको एक्सचेंज किया जाए और पैलेस्टीनियंस का जो सफरिंग है उसको एलिविएट किया जाए। ये आज बहुत ही डिफरेंट स्टैंस जो है व्हाइट हाउस का सामने आया है, क्योंकि इससे पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि कुछ वहां पे चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि वो इलेक्शन का जमाना है तो शायद वो कमला हैरिस के लिए जरा थोड़ी अच्छी वो पीआर लाना चाहते हैं, तो आज इन्होंने पहली बार ये कहा जी कि पैलेस्टीनियंस के जो सफरिंग्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर भी जंग छिड़ गई है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम वहां पर भी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि ये डील हो जाए और इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब कतारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने लास्टिंग पीस के लिए बड़ा काम किया। अभी सोचें जरा कुछ साल पहले तक ये कतर को टेररिस्ट स्टेट कहते थे, अब अपना जो है मतलब पड़ा हुआ है तो जी बड़ी तारीफें शुरू हो गई। एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो व्हेन अफगान वॉर वॉज गोइंग ऑन और पाकिस्तान की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तारीफें करती थी। अच्छा जी, तीन यूएस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये मीडिया को बताया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब कन्विंस्ड है कि ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है उसके होते हुए हानिया साहब की डेथ का बदला लेने के लिए जिनको के मारा गया था तेहरान में, ईरान जो है इसराइल के ऊपर अटैक्स कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो अमरीका है वो भी तैयारी करे बैठा हुआ है। हमास ने तो बिल्कुल ये कह दिया है क्लियरली कि हम आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और इसराइल के ऊपर हम अटैक करेंगे। उसके ऊपर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी घबराई हुई है और इसराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी पूरी तरह से तैयारी करके बैठी हैं और उन्होंने बहुत सारे जो इसराइलीज हैं उनको कहा है कि वार्न किया है कि आप ट्रैवल इधर उधर ज्यादा ना करें और जितनी भी जो फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी वहां पे शट डाउन की जा रही है क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं अपना जो है वो कुछ वॉर का सामान ताकि अचानक अगर उनके ऊपर अटैक किया जाए तो वो रिटेलिएट कर सकें। तो काफी गर्मा गर्मी जो है यहां पे चली गई है। उसके बीच में जो सऊदी प्रिंस हैं और जो यूएई में और बहरीन और कुवैत में जो हैं जो है किंगडम के जो हैं जो किंग्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हुए हुए हैं। तो कतर के साथ बातचीत चल रही है और कतर जो है अफसरों को बताएगा कि हम क्या करेंगे। बहरहाल इजिप्ट के अंदर भी आज कुछ डेलीगेट्स पहुंचे हैं और आज बड़ी खबर यह भी है कि इजिप्ट के अंदर कायरो में आज इजरायली भी कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। तो प्रॉब्लम तो है वहां पे काफी हलचल चल रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है जी वो उसकी रिपोर्ट ये रिवील करती है कि अफगान सॉयल जो है उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। इस चीज का जिक्र आज स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन वेदांत पाटिल ने एक प्रेसर के अंदर किया और उन्होंने कहा जी कि दाइश के जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शनल टेररिस्ट नेटवर्क को चला रहा है और उसका एम्बिशन भी है और उसके पास कैपेसिटी भी है कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक्स कर सकता है यूएसए के ऊपर और यूएसए के जो एलाइज हैं खासतौर पर वो जो उसी इलाके के अंदर हैं। जाहिर है कि ये इंडिया पे तो नहीं करना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तान के ऊपर ही करना चाहते हैं। तो शायद विधान पाटिल साहब का उसी में जिक्र था। उन्होंने कहा हम कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि इसका री इमर्जेंस जो है उसको दबाया जा सके। इसके अलावा हम अफगान को भी अपने पार्टनर्स के थ्रू बात कर रहे हैं कि ये जो है इस खतरे का बहुत सीरियसली नोटिस लें। जो पार्टनर्स हैं उनको हम ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे इन काउंटर अटैक टेररिस्ट रिक्रूटमेंट एफर्ट्स। और क्योंकि वो कहते हैं जी कि यूएन की रिपोर्ट जो है वो ये भी कह रही है कि ये रिक्रूट कर रहे हैं, जिसका जिक्र पाकिस्तान ने कई बार किया है कि टीटीपी के टेररिस्ट जो हैं उनके हाइड आउट्स और सेंचुरीज हैं अफगानिस्तान में और वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो थी उसने एंडोर्स किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है और आज स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हम अगर जो है कुछ ये टीटीपी वाले करेंगे तो हम अपने एलाइज का साथ देंगे। तो जनाब ये जो है अब फिर से इनके टेररिज्म के चक्कर अब शुरू हो गए हैं, तो क्या करेंगे अभी। यूरोप के अंदर और एशिया में और न्यूयॉर्क के अंदर स्टॉक्स जो हैं आज बहुत बुरे तरीके से गिरे हैं। उसकी वजह यह है कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स अब आनी शुरू हो गई हैं कि यूएस इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है और किसी भी वक्त अमेरिका के अंदर जो है अमेरिका रिसेशन के अंदर जा सकता है। एंड दिस इज बिग 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 बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। ये अमेरिका के लिए बैड वर्ल्ड नहीं है, बैड खाली न्यूज नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। इकोनॉमिस्ट हैं वो फियर करते हैं कि यूएस इकोनॉमी अगर वीक होती गई तो जो सेंट्रल बैंक हैं जो फेडरल रिजर्व है वो बहुत शॉर्ट कटिंग्स करेगा और बोरोइंग कॉस्ट जो हैं शायद वो उसको भी कट करना पड़े सितंबर के महीने में। तो शायद वो समझते हैं कि इस तरह से डिमांड को स्टिमुलेट किया जा सकेगा, यानी कि मार्केट का में सेंटीमेंट अच्छा किया जा सकेगा। लेकिन आज की जो खबर थी उससे काफी जो है उथल पुथल दुनिया में हुई। नैसडैक जो है इट फेल ऑलमोस्ट 3% इन अर्ली ट्रेडिंग। एक और जो अनदर ब्लो जो आज दुनिया को पता चला वो ये है कि यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.1% से बढ़ के 4.3% पे आ गया है। दिस इज अनदर बैड न्यूज। जापानीज इक्विटीज जो हैं वो कहती हैं जी कि पेंडेमिक के बाद आज हमने सबसे वर्स्ट डे देखा। निकाय 225 शेयर्स जो हैं वो दे वर डाउन 5.8% टू द लोएस्ट लेवल सिंस जनवरी। टॉपिक्स जो है इनका ही जापान का फेल 6.1%। ऑस्ट्रेलिया का जो एएस एक्सचेंज है वो इट फेल बाय 2.5%। हांगकांग का जो हैंगसेन है इट वाज डाउन 2.1%। यूरोपियन टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो थे वो भी 6 मंथ्स लो रहे आज। फ्रांस का सीएसी 40 जो है इट हिट द लोएस्ट लेवल सिंस लास्ट नवंबर और इट वाज डाउन 1%। जर्मनी का जो डैक्स था उसने आज लूज किया 2%। डच चिप मेकर जो है एएसएमएल उसके शेयर्स 9.6% से नीचे आए। उसका जो राइवल है एएसएम इंटरनेशनल उसके भी शेयर्स 13.7% से नीचे आए। लंदन के अंदर एफटीएसई जो है 100 ब्लू चिप शेयर उसने लूज किए 120 पॉइंट्स। इट वॉज डाउन 1.5%। अच्छा आपको सुनने वालों को शायद लग रहा है ओ जी व्हाट्स द बिग डील 1.3% 1.2 1.5% ये क्या 1.5% जो ये होता है ये इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो डील्स जो है और ये बिजनेस जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो यानी अगर किसी बड़े ने जैसे कि एलॉन मस्क ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या इसने अगर 1.5 लूज किया इट मीन्स दे लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसलिए जो है ये आज की काफी बैड न्यूज रही। और अगर आप आज सोशल मीडिया भी देखें तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल कहते हैं ना पागल हुआ हुआ था आज सोशल मीडिया। बिल्कुल ट्विटर के ऊपर अगर आपने मैसेजेस देखे हुए तो लोग पागल हो रहे थे कि अगर ये कुछ चल रहा है दुनिया में तो हम किधर सेफ हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम रही। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है और उसमें उन्होंने आज कुछ ट्रेस करने की कोशिश की है चीजें कि जो इस्माइल हानिया को मारा गया था इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें जो थी इन्वॉल्व थी, कैसे इन्होंने किया, ये कैसे सारा कुछ हुआ। ये जो एक्सप्लोजन था जिसने के मारा इस्माइल हानिया को और उनके बॉडीगार्ड को, कहते हैं जी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से रिमोट कंट्रोल से एआई को यूज करते हुए किया गया था और ये बॉम्ब तकरीबन 2 मंथ्स पहले स्मगल करके उस रूम में जो तेहरान का जो इनका गेस्ट हाउस था उसमें ऐसी जगह पे लगाया हुआ था जहां पे के ये नजर नहीं आ सकता था, लेकिन पता ये चला था कि ये यहां पे आके रहेंगे। तो जब भी ये आके रहेंगे एक एआई यूज करते हुए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए इसको उन्होंने ब्लो करना था। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो कहती है जी कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक यूएस और 7 मिडल ईस्टर्न ऑफिशियल्स जो हैं उनसे लिए, इसलिए हमारी ये रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो कहते हैं जी इनमें से 2 जो थे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो लोग हैं वो हैं और इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है तस्नीम न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्ट थी जिसने के कहा था कि एक मिसल ने हानिया साहब को मारा है। उन्होंने कहा जी कि ये मिसल जो है जब ये मारता है तो बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज होता है, आसपास की भी सारी चीजें ब्लो कर जाती हैं। अलबत्ता जो पिक्चर्स न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जो हमारे पास आई थी उसके अंदर सिर्फ कुछ शीशे टूटे हुए थे और थोड़ी सी जो है आसपास की जो चीजें थी वो गिरी हुई थी टूट के। स्कोप ऑफ डैमेज जो था वो बहुत ही लिमिटेड था, जबकि अगर मिसल का अटैक हो तो स्कोप ऑफ डैमेज जो होता है बेतहाशा होता है। हानिया साहब आपको हमने बताया था कि ईरान में आए हुए थे फॉर द स्वेरिंग इन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मसूद पेजशकियां, तो उसमें इनको जो है वो मारा गया था। इसमें जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही प्रिसीजन प्लानिंग थी और एक्सटेंसिव सर्वेलेंस उसकी कॉन्स्टेंटली, जो कॉम्प्लेक्स था उनका जो घर था गेस्ट हाउस उसकी कॉन्स्टेंटली जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे और उसका पता चला रहे थे कि भाई ये कहां है क्या है और एआई से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका कमरा कहां है और वहां पे एग्जैक्टली जाके इन्होंने वो चीज जो थी प्लांट की थी और उसकी वजह से सिर्फ उस रूम में जहां पे ये थे उधर और उसके आसपास जो जैसे उनका बॉडीगार्ड था वो चीजें जो हैं वो हुई हैं। जैसे एग्जैक्टली जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के नीचे जिस वक्त आप लगाते हैं डेटोनेटर्स तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आके आराम से गिर जाती है, आसपास जो है कोई उसका डैमेज नहीं। एग्जैक्टली इन्होंने ऐसे ही यूज किया है। इसके साथ साथ जो है आज ये हुआ है कि शेख इकरीमा साबरी 85 ईयर्स उनकी एज है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम रहे हैं ये और इस वक्त करंट हेड ऑफ सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल हैं। उन्होंने आज जो जुमे का सर्मन हुआ था उसमें हानिया साहब को मार्टर करार दिया, क्योंकि आज आपको पता ही है कि कतर के अंदर उनका बरियल हुआ है, कल ईरान के अंदर उनकी एब्सेंटिया में उनके फ्यूनरल प्रेयर्स हुए थे और आज कतर में उनको किए, तो उस मौके के ऊपर और जुमे के प्रेयर्स के बाद इन्होंने कहा कि हानिया साहब जो हैं वो एक शहीद हैं। जब इन्होंने ये सर्मन दिया तो इजरायली पुलिस के बंदे आ गए और मिलिट्री के भी, वो इनको पकड़ के ले गए और वो कहते हैं जी आपने जो है वो हेट्रेड इंसाइट किया है और टेररिज्म के चार्जेस जो हैं इनके ऊपर लगाए हैं। अब 85 ईयर ओल्ड आदमी जो है इसको भी उठा कर ले गए हैं, तो बस अल्लाह ही इनको समझा सकता है इसराइलीज को, क्या आप कह सकते हैं। ये जो लेबनान की वजह से जी बहुत ज्यादा लेबनान के बॉर्डर पे इसराइल के टेंशन्स बढ़ गए हैं और ऑलरेडी भी जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश के ऊपर हैं या इसराइल, उसके ऊपर आज यूके की जो गवर्नमेंट है उसने आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है या एटलीस्ट वो सोच रहे हैं वो स्टेप लेने के लिए। यूएस ने कहा है जी कि हम जो अब आर्म्स सप्लाई करते हैं इसराइल को वो हम आर्म्स सप्लाई करना बंद कर देंगे। हालांकि यूके की जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है इसराइल को वो बेतहाशा नहीं है जिस तरह के अमरीका की है, सिर्फ 18.2 मिलियन पाउंड्स की है जो कि लास्ट ईयर जो कि कोट किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम सोच रहे हैं कि एक एम्बार्गो लगाया जाए। अब अगर इसके ऊपर एम्बार्गो लगाया जाएगा तो आप सोचते होंगे तो आई मीन व्हाट्स द बिग डील, क्योंकि अमेरिका तो उनको इतना बेतहाशा ऑलरेडी दे रहा है। और केयर स्टार्मर जो है जिस वक्त अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था इसराइल पे तो उन्होंने बिल्कुल इसराइल का साथ दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि भई हम जो है इनके साथ खड़े रहेंगे। अब जबकि वो जीत गए हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो शायद अब उनको चीजें जो है वो बहुत सारी पता चली हैं, तो अब वो जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं पहुंची क्योंकि बहुत सारी यूके की भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं गाजा के अंदर, तो उन्होंने जाहिर है उनको बताया होगा कि कितनी बुरी हालात है। तो अब ना तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आया था एक रूलिंग के जी इनको नतन्याहू साहब जो हैं इनको और जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट इसके लिए अरेस्ट वारंट्स निकालने की जरूरत है, उसका भी इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि नहीं होना चाहिए ये। और इसी तरह जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश जो पब्लिक है उसका मूड देखते हुए ये भी नहीं कहा कि हाँ जी बिल्कुल ये सही वहां पे हो रहा है, बल्कि आज उन्होंने ये जो खबरें आई हैं मीडिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर जिसके ऊपर काफी कान जो है वो खड़े हुए हैं इसराइल के कि शायद वो इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाएंगे। अच्छा अब वही जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अब ऐसी भी क्या बात है, इतना क्यों घबरा गया है उसके ऊपर इसराइल इसलिए परेशान है उसकी वजह से क्योंकि बहुत सारी जो यूके की कंपनीज हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारी चीजें जो कि जैसे ये अमेरिका से जो लेते हैं तैयारे F-35 फाइटर्स या कि और बहुत सारी चीजें जो लेते हैं अमेरिका से, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स पैदा हो जो बनाए जाते हैं वो यूके के अंदर बनाए जाते हैं, तो यूके जो है इनको ये सारी चीजें भेजता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है इनकी बढ़ गई है कि अब अगर इन्होंने ये किया तो फिर कैसे चलेगा। इसके साथ साथ यूके के अंदर बहुत सारे जो वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर भी जो है उसने आज प्राइम मिनिस्टर जो है कायर स्टार्मर उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ये मेहम एंड होना चाहिए, उन्होंने ब्लेम किया है आज फार राइट हेट्रेड जो फैला रहे हैं और वो कह रहे हैं जी फार राइट वाले ये हेट्रेड फैला रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब आने वाले दिनों में मैं अनाउंस करूंगा कि पुलिस जो है उसको ज्यादा पावर्स दी जाएंगी ताकि वो ये सब चीजों को रोक सके। तो ये यूके में दो जो हैं आज की बड़ी डेवलपमेंट्स जो थी वो थी। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने जमात इस्लामी को अब कम्प्लीटली बैन कर दिया है और ना सिर्फ ये हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था बट आज की डेवलपमेंट ये है कि उसका जो स्टूडेंट्स विंग है इस्लामी छात्रा शिविर उसको और उसके जो दूसरे एसोसिएट्स हैं यानी कि जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको बैन कर दिया है और उनके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ लगाया है और उन्होंने कहा जी कि ये इफेक्टिव होएगा इमीडिएटली। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत मैसिव किस्म के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसके के अंदर 150 लोगों की डेथ हुई है इसके अंदर जेआई का यानी कि जमात इस्लामी का बहुत रोल है क्योंकि जमात इस्लामी बहुत वोकल है शेख हसीना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने कहा जी ये जो कुछ भी कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने फिर जेआई को और इनको जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी उनको कहा था कि ये वायलेंस जो है कर रहे हैं। इनके वायलेंस के होते हुए उन्होंने कहा जी कि अब कर्फ्यू लगाओ जो बड़े शहर हैं उसके लिए। पार्टी चीफ जो हैं अलबत्ता जेआई के शफीकुर रहमान साहब उन्होंने कहा जी कि ये पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी जो है एक तो वो ब्लेम गेम कर रही है और उसको यूज किया जा रहा है जेआई के और अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट। उन्होंने कहा जी कि इस वायलेंस को इमीडिएटली खत्म होना चाहिए और वैसे तो जमात इस्लामी को 2013 से ही बैन कर दिया गया था, कोर्ट का एक डिसीजन आया था बांग्लादेश में जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है और उसके सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं जमात इस्लामी की सारी हरकतें तो इसलिए इसको बैन किया जाता है। लेकिन अब वो बैन जो है बढ़ा दिया गया है उनकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस और उनका जो स्टूडेंट विंग है उसके ऊपर भी, तो ये चीजें बांग्लादेश में भी जनाब भड़क रही हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओंटारियोज़ लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट और इनके भी दो रेस्टोरेंट्स हैं जी, एक मिसिसागा में है 4141 डिक्सी रोड, 9052323663 वहां का नंबर है और जो दूसरा इनका रेस्टोरेंट 2294 लेकशोर रोड वेस्ट के ऊपर है उसका नंबर है 9052262294 और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल 2935 ड्री रोड मिसिसागा के ऊपर लोकेटेड है और वो कहते हैं जी आप 32 रूम लग्जरी होटल है हमारा, आप अपने कोई भी छोटे बड़े इवेंट्स हमारे साथ कर सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 8647965-3823। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं इसकी कॉस्ट को नीचे करने की कोशिश करूं और उन्होंने कहा जी कि लेकिन इसको ज्यादा इस मसले को पॉलिटिसाइज ना करें क्योंकि जब आप पॉलिटिसाइज करते हैं तो आप लोगों की इंसल्ट करते हैं। भाईजान ये क्या बात आपने किया है, लोगों की इंसल्ट कैसे, इंसल्ट तो आपकी है कि आपने इतने बढ़ा दी है कॉस्ट। बड़ा जी एक बहुत हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग जो है उसको ये चेयर कर रहे थे और वो कह रहे थे पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स मत करें, और ये जो बहुत ज्यादा जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहे हैं ऑन अगेंस्ट हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता ही है कि इस्लामाबाद की तरफ मेजर रोड जितनी भी जाने वाली हैं सबको शट डाउन करना पड़ रहा है, इतने ज्यादा ये प्रोटेस्ट जो है ये हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों के अंदर ट्रेडर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट लिए बैठे हुए हैं, और प्रोटेस्टर्स जो है और भी इलाकों में स्ट्रीट्स के ऊपर भी निकले हुए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो अब आपने ना सिर्फ पावर को एक्सपेंसिव किया बल्कि उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं, उसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास इनकम के जो लोग हैं वो बिल्कुल ये नहीं दे सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि हम इस प्रोटेस्ट को जो हम अभी धरना दिए बैठे हुए थे सिर्फ रावलपिंडी में, उसको स्ट्रीट्स पे ले जाने के लिए भी तैयार हैं। लास्ट फिस्कल ईयर जो था उसके जो खत्म हुआ June 30th को, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 26% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और उसके बाद 13 जुलाई को इन्होंने और ज्यादा और भी इसके ऊपर भी 26% के ऊपर और 20% जो है रेट्स बढ़ा दिए थे, जिसकी की वजह से लोग चीखे हैं और वो बाहर आए हैं। फेडरल लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर ने आज अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सपोर्ट पैकेज ऑफ 5 million rupees टू ईच फैमिली ऑफ मिसिंग पर्सन्स, और उन्होंने कहा जी कि ये पैसे यूज किए जा सकेंगे टू प्रोवाइड लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देम। आज मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे, ये जो मीटिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उसके मीटिंग के बाद ये जो है यहां पे मीडिया के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो अप्रूव किया है, ये जो बहुत सारी प्रीवियस कमिटीज की रिकमेंडेशंस हमें आई थी उसकी बेस पे हमने किया है, और दो हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी जिसमें के कहा गया था कि एक सब कमेटी जो है उसको फॉर्म किया जाए ताकि वो ये सारे केसेस को एग्जामिन करे, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनकी फैमिलीज को एक सपोर्ट दी जाए ताकि वो अपने लीगल मामलात को बढ़ा सके। उन्होंने कहा जी कि ये मत समझें कि ये रिन्यूमरेशन है, यानी कि ये पैसे हैं या ये सैलरी है, एज सच ये कोई सैलरी नहीं है, ये सिर्फ वो जो इनकी तकलीफ है उसको कम करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने मामलात को आगे चला सकें, यानी कि अगर कोई लॉयर्स वगैरह वो करना चाहते हैं तो उनको ये फीस वगैरह वो दे सकेंगे। और ये स्ट्रिक्टली जो मिसिंग पर्सन्स की जो फैमिलीज हैं सिर्फ ये पैसे उन्हीं को दिए जाएंगे। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसने कहा जी कि ये जो इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है हाई बिल्स का, उसके ऊपर एक फोरेंसिक ऑडिट बिठाने की जरूरत है। ये जो मीटिंग है इसको चेयर कर रहे थे सेनेटर राणा महमूदुल हसन, और इसके अंदर थे नेपरा के चेयरमैन वसीम मुख्तार, जिसमें कि उनको पूछा जा रहा था कि ये जो आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो लेकर आए थे जिन्होंने कितनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, उनका क्या ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ऊपर बात करते हुए आज मुख्तार साहब ने कहा कि हमको एक बैलेंस रखना पड़ता है गवर्नमेंट को, पावर कंपनियों को और कंज्यूमर्स के बीच में, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो जल्द ही इंस्टॉल किए जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में जो है ये ओपन कर दिए जाएंगे कमर्शियल मार्केट के लिए, और कंज्यूमर्स को भी कहा जाएगा कि ये सारी जो कंपनीज हैं ये मार्केट के ऊपर हैं, आप अपनी चॉइस की कंपनी से आप बिजली जो है वो खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि यस पुरानी गवर्नमेंट्स ने मिस्टेक्स की, लेकिन पावर का क्राइसिस 2007 में बेतहाशा बढ़ गया था। एज अ रिजल्ट 2013-2014 में जो पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए गए विद द हेल्प ऑफ चाइना, और हमने सोचा कि जीडीपी जो है हमारी 6% से ग्रो करेगी जैसे जैसे हमारा पावर जो है नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल होता जाएगा, लेकिन हमने ओवर कैपेसिटी पैदा करना शुरू कर दिया और डिमांड हमारी नीचे जाना शुरू हो गई। पावर शॉर्टेज के होते हुए गवर्नमेंट जो थी उसने फिर बहुत शुरू में इंसेंटिव दिए थे इन कंपनीज को, और पेमेंट्स कहा था कि हम डॉलर्स में करेंगे, क्योंकि जब आप कंपनियों किसी को इन्वेस्ट के लिए के बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनको इंसेंटिव देने पड़ते हैं, लेकिन जब हमारी डिमांड नीचे आए तो पैसे हमको उतने ही देने पड़ रहे थे उनको डॉलर्स के ऊपर। तो लेकिन ये सब चीजें स्टेबलाइज हो सकती हैं अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है मुल्क की स्टेबलाइज हो। वसीम मुख्तार साहब ने कहा कि पैसे की लेकिन वैल्यू जो है वो नीचे आती जा रही है और डॉलर की ऊपर जो आती जा रही है, जिसकी की वजह से ये बिजली बहुत महंगी बनती जा रही है। इसके ऊपर बात करते हुए सेनेटर अब्दुल कदीर ने कहा कि जो आईपीपीज हैं ये इन्होंने पिछले 10 साल में बेतहाशा पैसा बनाया है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। तो आज सेनेट में यानी कि ऑडिट की मांग इनके ऊपर करनी पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर 31 TTP के जो एक्टिविस्ट हैं, देखो जी मुल्क के अंदर बैठे हुए थे, TTP के एक्टिविस्ट जो हैं, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ मदरसा एंड डिस्ट्रिक्ट अमीर ऑफ अ पार्टी, इसको आज बुक किया है अंडर सेक्शंस ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट एंड पाकिस्तान पीनल कोड इन 3 सिटीज ऑफ पंजाब फॉर इंसाइटिंग वायलेंस, प्लानिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा। पिंडी के अंदर वो कहते हैं खासतौर पे जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है उसने तो 28 of 31 जो है 28 लोगों को जो है यहां पे पकड़ा है, जिसकी की रिपोर्ट दी थी सब इंस्पेक्टर इजाज हुसैन गुम्मन ने। वो पेट्रोल कर रहा था हाईकोर्ट रोड के ऊपर और उसको पता चला कि कुछ लोग जमा हो रहे हैं जामिया जियाउल अलूम एस्ट्रिज हाउस सोसाइटी के अंदर, जिसको के रन करते हैं सैयद इनामुल हक सुल्तानपुरी। वहां पे वो कहते हैं जी कि ये बाकी के भी जो सस्पेक्ट्स थे वो जमा हो रहे थे, जिसमें के थे मुफ्ती उमेर, डॉक्टर शफीक अमीन, अलामा मोहम्मद शफीक कादरी, चौधरी रिजवान शफी, पीर सैयद इरफान, नाम देखो जरा माशाल्लाह, हमीद शाह, अलामा रब नवाज फारूकी, एडवोकेट चौधरी तैमूर, और ये प्लान कर रहे थे कि मुल्क भर में प्रोटेस्ट किए जाएं और प्रोसेशंस निकाले जाएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। वो कहते हैं जी कि ये सब लोग जो हैं रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे थे, दूसरी जो सेक्स हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे थे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर ये इन्वॉल्व थे, जिससे कि अगर ये पकड़े न जाते तो बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर तूफान आता। इसी तरह की सिमिलर रिपोर्ट्स जो थी बाकी भी सिटीज में से आई थी, जिसके के ऊपर फिर पुलिस ने रेड्स बिठाए थे और फिर उसकी वजह से ये 31 लोग जो हैं ये पकड़े गए हैं। तो जनाब ये सारा कुछ जो है हो रहा है और पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, इनकी आईबी कहाँ है और आईएसपीआर को तो सिवाय पीटीआई के खिलाफ बातें करने के और कोई काम नहीं। अगर आईएसपीआर वाले भी जरा सही काम कर लें, आईएसआई वाले यानी, तो वो इनको 2 मिनट में पकड़ सकते हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो भाई आपकी लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि आपकी सहमति तो नहीं है शामिल इसमें। तो ये अच्छा जनाब, ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है और ये बहुत ही अंदर की खबर है, ये सही अंदर की खबर है ये जो ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है। वो कहते हैं जी कि ऊपर ऊपर तो हमें नजर आ रहा है कि इंडियन और कनेडियंस के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कोई इनकी आपस में बातचीत नहीं है, लेकिन जो इंडिया और कैनेडा के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो बहुत सारा टाइम अब मिल चुके हैं और बहुत सारी इनके बीच में डिस्कशंस चल रही हैं टू फाइंड आउट कि ये जो अननोन प्लॉट था टू किल हरदीप सिंह निजर इन बीसी सरी के अंदर जून 2023 में जो मारे गए थे उसके अंदर क्या चक्कर था। इस सिलसिले में कनाडा ने 5 लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया था नवंबर 3 को 2023 में नियर ब्रैम्पटन, बिल्कुल उस दिन जिस दिन के एक दिन वन डे बिफोर ये जो थे एक प्रोमिनेंट खालिस्तानी मेंबर था उसके बेटे की वेडिंग होने वाली थी टोरंटो एरिया के अंदर, जिसके के अंदर बहुत वेल नोन एडवोकेट्स और न्यूयॉर्क बेस्ड लॉयर्स जिसमें के गुरपतवंत सिंह पन्नू वगैरह भी थे, उन्होंने ये चीजें अटेंड करनी थी। तो ये जो अरेस्ट हुए थे इंक्लूडिंग अमनदीप सिंह, इसको चार्ज किया गया था निजर साहब की मर्डर के लिए और वो कहते हैं जी कि ये न्यूज सबसे पहले सीबीसी ने ब्रेक की थी और उसने कहा था कि ये 5 लोग जो हैं कनेडियन पुलिस ने आरसीएमपी ने इनको पकड़ा है बिफोर द वेडिंग और इनके नाम थे सुवारन प्रीत सिंह 21 इयर्स इसकी एज थी, जोबन प्रीत सिंह 21 इयर्स, मनिंदर सिंह 22 इयर्स, तो छोटे छोटे ये बच्चे थे। इसके लिए वो कहते हैं जी कि और भी एक बात जो अब सामने आई है कि निजर के अलावा ये एक और भी किसी बंदे को मारना चाहते थे। अब वो एक और बंदा कौन सा है उसके बारे में तो डिटेल्स ब्लूमबर्ग ने नहीं दी हैं, लेकिन एक और बंदा माना जाता था। ब्लूमबर्ग कहता है कि ये जो अब इंटेलिजेंस चीफ्स हैं इंडिया और कनाडा के जो इनके बीच में अब बातचीत चल रही है उसके बेसिस पे रॉ जो है जो उसको एविडेंस दी गई है रॉ को उसकी बेस पे उन्होंने बहुत सारा स्टाफ जो है उनको निकालना पड़ सकता है क्योंकि वो शायद अलेजली ये जो किलिंग्स हैं इन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं और रॉ ने किया भी है जो शो करता है कि एजेंसी के अंदर काफी क्लीन अप किया जा रहा है। इसके अलावा एक ऑफिसर जो है जिसके के बारे में इनको पता था उन्होंने कहा जी कि उसके बारे में तो इंडिया ने भी बहुत क्लियरली कैनेडा को बताया है कि वो रोग बन गया था, वो रोग एजेंट हो गया था और उसने जो है यहां पे इसको पन्नू को गुरपतवंत सिंह पन्नू को यानी कि अमरीका में मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो कहती है जी कि पन्नू साहब ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो कोई खास काम नहीं कर रही है इन इंडियन एजेंट्स को रोकने के लिए और वो इनको बड़े आराम से ऑपरेट करने दे रही है क्योंकि उन एजेंट्स को अब पता चल गया वो इतने आराम से इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि कोई भी उनके क्राइम का कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा, वो पकड़े नहीं जाएंगे या उनको पकड़ा नहीं जाता है और वो जो भी कोई क्राइम्स कमिट करना चाहेंगे कनाडा में वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने आज बड़े एलिगेशन लगाए हैं। भारत जी, बीच की खबर यह थी कि कनाडा और इंडिया की इंटेलिजेंस जो एजेंसी के ऑफिसर्स हैं वो अब वाकई ये जो निजर साहब की डेथ हुई थी उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि मियां के हमने आपको बहुत सारे बताए थे, सुनाए थे, स्टेटमेंट्स बताए थे जिसमें उनके जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं एस जयशंकर साहब वो भी कह रहे थे कि हमको कोई कनाडा ने इस सिलसिले में जो है डोजियर नहीं दिया है तो हम उस पर कैसे काम करेंगे। तो लगता है कि अब कनाडा ने जो दिया है तो इंडिया उसके ऊपर काफी सीरियसली काम कर रहा है एंड दिस इज अ बिग 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 न्यूज। इसके बारे में ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं बट हम तो आपको बताइए हमेशा बिहाइंड द सीन स्टोरी लाते हैं आपके लिए। तो जनाब ये आई थी। अच्छा जनाब, आज तक तो हम सुन रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस जो हैं वो लड़ रहे हैं, दे हैड लॉक्ड हॉर्न्स, तो बड़ा ही आज की जो लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर हुई बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आप जो है वो भी उसमें शामिल हो गई और तीनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा जी कि दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं जरा दिल्ली की हालत देखें जो इनकी राजधानी है, है जी, और वो कहते हैं जी नदी नाले यहां पे बह रहे हैं, बारिश आती है तो पानी जो हम कहते हैं ना गोडे गोडे पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का नेटवर्क जो है वो कंप्लीटली कलैप्स कर गया है, कोई सीवेज जो है वो नहीं निकल रही, यानी कि वो जो गटर का गंदा पानी होता है वो उसको निकलने के कोई तरीके नहीं है और डीसिल्टिंग जो है यहां पे नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो है सारे का सारा जो दिल्ली है वो बदबू छोड़ रहा है। आप जो है सबसे पहले उसने तो जी एक्यूज किया चीफ दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार साहब, उन्होंने कहा जी कि इसको सब कुछ पता भी है और ये पिछले 3 साल से जो है ऑडिट नहीं करा रहा और ये डीसिल्टिंग जो है नहीं करा रहा। दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी कहा जी कि पिछले 2 साल में बेतहाशा पानी जो है वो गलियों में, स्ट्रीट्स पे, कॉलोनीज के अंदर खड़ा हो जाता है क्योंकि ड्रेन्स को डीसिल्ट नहीं किया जा रहा। कितने ही चीफ मिनिस्टर्स एमएलए कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, सीबीआई की इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए कि ये करप्शन कहां तक पहुंची हुई है। दिल्ली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने भी ये कहा जी कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और इररिस्पॉन्सिबल है ऑन पार्ट ऑफ दिल्ली मिनिस्टर्स के जो एक ब्लेम गेम में है और कोई इमरजेंसी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं इस फ्लडिंग को और इस गंध को और ये वाटर लॉकिंग को खत्म करने के लिए, और बड़ा ही शॉकिंग है। उन्होंने आज बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा बड़ा ही शॉकिंग है कि जो पार्लियामेंट हाउस है नया वाला जिसको के 1200 करोड़ रुपए से बनाया गया है और जो आसपास का पॉश एरिया है वहां तक पानी खड़ा हो जाता है और वो पानी बास मारने लगता है यानी कि स्मेल देने लगता है और जो है उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं संजय सिंह साहब, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी जो है इंतहाई ज्यादा करप्शन में, सर से लेके पैर तक करप्शन में भरी हुई है, ये बड़े बड़े ब्राइब्स लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ब्राइब्स लेते हैं, ये टेंडर्स के अंदर ब्राइब्स लेते हैं। वो कहते हैं जी ये इन्होंने जो टेंडर्स दिए थे वर्थ 3.2 लाख करोड़ के जो दिए थे इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने बीजेपी वालों ने जो है वो ब्राइब्स लिए हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए थे और ये जो चीफ सेक्रेटरी है इसको सब पता है, ही इज वेरी क्लोज टू लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, लेकिन ये सारा कुछ छुपा रहा है और ये लोगों को बिल्कुल भी कुछ बता नहीं रहा है। लो जी ठीक है जी, हूं लड़ाई जड़ी है उत्थे भी है तो इस वास्ते घबराना नहीं है अगर आपके मुल्क में भी चल रही है तो। आज एक बहुत बड़ा केस जो बड़े दिनों से चल रहा था जस्टिन टिम्बरलेक का जनाब, वो आज सामने आया है, उसमें इन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और इनको जो है वो गिल्टी पाया गया था टू चार्ज ऑफ ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड और इनको अरेस्ट किया गया था अर्लियर दिस समर इन न्यूयॉर्क। आज जो इनकी हियरिंग थी सैग हार्बर में थी न्यूयॉर्क के अंदर और वहां पे बस ये दो ही दफा बोले यस यस टू जस्टिस कार्ल रेस जो है उनकी बात के ऊपर। इनको अरेस्ट किया था जून में जब पुलिस ने इनको कहा कि ही वाज ड्राइविंग हिज 2025 बीएमडब्ल्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन और ये जो थे इनको हमने जब रोका तो ये रुके नहीं, इनको स्टॉप साइन नहीं नजर आया, जब हमने इनको चलने को कहा तो ये अपनी ना गाड़ी इनकी लेन में थी ना ये खुद चल सक रहे थे, इनकी स्पीड स्लो थी और जो है ये बहुत ही अनस्टेडी थे जब इनको हमने खड़ा किया गया, और ये बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहे थे जो, और हमने जो इनका फील्ड सोबराइटी टेस्ट लिया था वो भी बिल्कुल जो है वो सही नहीं आया था। टिम्बरलेक ने कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, मैंने पुलिस को बहुत क्लियरली बताया था कि मैंने सिर्फ एक मार्टिनी पी है और एक और मार्टिनी मैंने पी थी अपने एक दोस्त के घर के ऊपर। इनका जो अटॉर्नी है उसने भी आज कहा कि इसको तो इतनी सी बात पे तो इसको अरेस्ट ही नहीं करना देना चाहिए था, और इसको क्यों अरेस्ट किया है, ये बिल्कुल गलत पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। और जाहिर है कि कभी कभी सेलिब्रिटी स्टेटस जो है आपके लिए कर्स बन जाता है, तो वो बिग न्यूज बनाने के लिए ऐसा करते हैं। बहरहाल जी, आज जब इनको लाया गया तो उन्होंने नॉन गिल्टी प्ले किया। और जनाब अक्षय कुमार साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी कि मेरी जब चार पांच फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं तो लोग मुझे जो है वो मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी इनकी फिल्म जो थी बड़े मियां छोटे मियां और सर फिरा, वो अक्षय कुमार की नहीं चली थी, तो उन्होंने कहा जी कि उसके ऊपर मुझे बड़े जी वो दुखी मैसेजेस भेजने शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं सॉरी यार फिक्र मत कर। तो वो कहते हैं कि मैं उनको जवाब देता हूं कि भाई साहब मैं अभी मरा नहीं हूं, मरा नहीं हूं मैं। और अक्षय कुमार साहब कहते हैं जी कि मुझे इस तरह ऑब्विचुरी मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये असल में एक जो खेल खेल में इनकी अभी फिल्म आई है, आने वाली है 15 अगस्त को, उसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ये थे और उस पर लोग इनसे बात कर रहे थे कि सर आपकी जो मुंबई में थे ये, कि सर आपकी जो फिल्में जब चलती नहीं है तो आप कैसा उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। कहते हैं मैं तो ठीक रहता हूं लेकिन ये लोग ठीक नहीं रहते। कहते हैं एक तो जर्नलिस्ट था, उसने लिखा कि डोंट वरी सर यू विल बी बैक। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उससे पूछा भाई तूने ये क्यों लिखा है, ये बैक का तेरे से क्या मतलब है, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं काम भी कर रहा हूं। तो आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मुंबई के अंदर बातें की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो, उनकी मुलाकातें जो अनुराग कश्यप के साथ होती हैं और जिसके के अंदर वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली दफा मेरी जो इनके साथ मुलाकात हुई थी शूल के सेट पे हुई थी 1999 में, और उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा रोल था, और जब इसने मुझे देखा मेरा स्क्रीन टेस्ट किया तो उसने कहा कि तुम बड़े स्टार हो, तुम्हें ये छोटा सा रोल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद इसने मेरा एक छोटा सा पार्ट सरफरोश में भी देखा था, तो उसने कहा कि नहीं तुम वेट करो तुम्हारे पास बड़ी फिल्म आएगी, लेकिन मेरी हालत उस वक्त बहुत ही खराब थी और मुझे वो पार्ट चाहिए था शूल का, तो वो मैंने ले लिया और वो मैंने किया। कहते हैं बस उस दिन से हमारी दोस्ती जो है बड़ी पक्की हो गई है, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मैं उनकी करता हूं, और पहले दिन ही मिलने से मुझे पता चल गया था कि भाई ये मेरी वाइब का बंदा है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे लगा उसी वक्त कि ये मेरा ख्याल करेगा और इसकी जो है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, तो उस दिन से फिर हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन नहीं, जय शाह साहब नहीं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब जो हैं, उन्होंने आज बहुत ही खतरे का, बल्कि कल रात जो उनकी मीटिंग वहां पे इंडिया में चल रही थी उसमें उन्होंने मीटिंग के अंदर बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम माइट विजिट पाकिस्तान, माइट का उन्होंने लफ्ज किया, फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑन गवर्नमेंट अप्रूवल। वैसे तो गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो वो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर प्रीमियर लीग की को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान भी फ्री है टू डिसाइड कि वो 2026 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा इंडिया के मैचेस में के नहीं, यानी कि इंडिया के खेलेगा या नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा जी कि जो हिंदुस्तान का इस वक्त रवैया है पीसीबी रिटेलिएट कर सकता है और जो हिंदुस्तान के अंदर टूर्नामेंट्स होंगे उनको स्किप कर सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे क्योंकि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का है, बीसीसीआई का नहीं है। पाकिस्तान आपको पता ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होस्ट करने वाली है, लेकिन जाहिर है कि उसको चैलेंजेस फिर से आएंगे, इंडिया कहेगा हम नहीं आना चाहते, जो कि मुझे पहले ही पता है और मैंने आपको बड़ी दफा बताया, और कहेगा कि न्यूट्रल वेन्यू पे करो, पाकिस्तान पैसे बेचारा बनाने के लिए कहेगा ठीक है सर आपके लिए न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं जैसे लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन आज राजीव शुक्ला साहब ने, यानी कि कल की जो मीटिंग थी रात की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो फिर अगर इन्होंने अब भी ऐसा किया हिंदुस्तान ने तो मुझे लगता है कि जो आने वाले आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में होंगे उसको पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा, जो कि मुझे लगता है करना ही चाहिए पाकिस्तान को, अगर हिंदुस्तान नहीं आ रहा तो आप भी फिर जाके ना खेलो भाई वहां पे ऐसे। और जनाब सऊदी अरेबिया जो है वहां पे होने वाले हैं 2034 में वर्ल्ड कप ऑफ जो है मेंस सॉकर, यानी कि फीफा के जो है वहां पे मैचेस होंगे, उसके लिए जनाब मैसिव तरीके से ह्यूज किस्म के जो स्टेडियम्स हैं वो बनाते जा रहे हैं। एक तो जो वेन्यू है 350 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है जो वहां की सऊदी अरेबिया की फ्यूचरिस्टिक सिटी है उसके अंदर 46,000 सीटर स्टेडियम जो है एक बनाया जा रहा है नोम मेगा प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि बिल्कुल रेड सी के कोस्ट के ऊपर है। यानी कि इतना वो खूबसूरत है कि वो उसका जो स्टेडियम है उसको पानी लगता है आके, यू नो पानी के पास है बिल्कुल वो। और ये जो है वो कहते हैं जी वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क जो है ये बनेगा। 8 of 15 स्टेडियम जो है वो रियाद में होंगे, 4 जद्दा के अंदर होंगे, 1 अल खुबर में होगा और 1 होगा अबा न्योम के अंदर। वो कहते हैं जी इस वक्त 4 स्टेडियम्स हैं और बाकी के 11 जो हैं अगले 10 साल के अंदर बिल्ड किए जाएंगे। फाइनल मैचेस जो हैं वो किंग सलमान स्टेडियम के अंदर होंगे, जो कि अकोमोडेट कर सकता है 92,000 पीपल वंस कंस्ट्रक्टेड। तो वो कहते हैं जी कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उधर बड़े ही खूबसूरत, क्योंकि इसमें बहुत ही इनोवेटिव किस्म का मटेरियल यूज किया जा रहा है, ग्लास और बहुत सारी दूसरी जो है, और उसकी जो स्टेडियम्स होंगे ये एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। उनके अंदर बेशुमार फैसिलिटीज होंगी प्लेयर्स के लिए और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए। वो कहते हैं जी ऐसी फैसिलिटीज वहां पे होंगी जो कि इससे पहले शायद लोगों ने एंजॉय नहीं की होंगी कहीं भी दुनिया में। तो जाहिर है भाईजान अरब्स जो है वो तो नेक्स्ट लेवल का ही काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड जनाब पाकिस्तान की फैका रियाज एंड किशमाला तलब जो हैं दे फेल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शूटिंग इवेंट्स एट पेरिस ओलंपिक्स। फैका जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी नेक्स्ट राउंड ऑफ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की जो शूटिंग का था अब उसमें आगे नहीं जा सकी हैं। और इसके अलावा क्योंकि फैका जो है वो रेसर है और किशमाला जो है वो शूटर है, ठीक है, तो वो रेस में नहीं जा सकी और सिक्स उन्होंने फिनिश किया। किशमाला जो थी वो वुमेन्स 25M पिस्टल इवेंट जो थी उसके अंदर तो वो उनका तो नंबर खैर 22nd रहा, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आगे कर सकी। हालांकि